आर्यांश दीवा से बात करने के लिए समय के कोचिंग सेंटर में आया हुआ था। समय ने दीवा को पहले ही अंदर भेज दिया था ताकि आर्यांश उससे मिल न पाए, लेकिन दीवा अच्छे से जानती थी कि समय चाहे उसे रोकने की कितनी भी कोशिश करे, अगर आर्यांश उससे मिलने के लिए यहाँ तक आया है तो वो उसे नहीं रोक पाएगा। हालांकि आर्यांश को समय से ज्यादा बहस करने या उसे डराने धमकाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि समय की दादी के चिल्लाने की आवाज़ आने पर समय दौड़कर उनके पास चला गया था, शायद वो गिर गई थी। इस बीच आर्यांश दीवा के पास पहुंचा। दीवा देखने से ही बीमार नजर आ रही थी। आर्यांश उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जा रहा था और दीवा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। इस छीना झपटी में दीवा को धक्का लगा, वो डेस्क से जा टकराई थी। दीवा को खुद समझ नहीं आया था कि एक सामान्य सी चोट उसे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों दे रही है। उसके गिरने पर आर्यांश भी घबरा गया था और वो जल्दी से दीवा के पास पहुंचा। दीवा किसी भी तरह से ठीक नहीं लग रही थी। आर्यांश और दीवा को तब समझ आया कि आखिर क्या हो रहा है, जब दीवा ने जमीन की तरफ इशारा किया और वहां खून की बूंदें गिरी हुई थीं। इस बीच आर्यांश की नज़र दीवा के पैरों की तरफ गई, जहां उसके लोअर बॉडी रीजन से खून निकल रहा था।
तुम प्रेग्नेंट हो?" आर्यांश ने कांपती आवाज में पूछा। उसके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे।
दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे बस अपने आसपास सब कुछ रुकता हुआ सा नजर आ रहा था। दीवा को कितनी तकलीफ हो रही थी, इसका अंदाज़ा आर्यांश इस बात से लगा सकता था कि उसने उसके हाथ को बिल्कुल कसकर पकड़ लिया था। आर्यांश ने जल्दी से दीवा को अपनी बाहों में उठाया और बिना सोचे समझे बाहर भागने लगा था। बाहर आते ही उसकी मुलाकात सीधे समय से हुई, जो अपनी दादी को देखने के बाद आर्यांश से बात करने के लिए आ रहा था। उसने देखा दीवा बेसुध सी हालत में आर्यांश की गोद में थी और उसके पैरों पर खून लगा हुआ था। इससे क्या, समय बोल रहा था तभी आर्यांश ने जल्दी से उसकी बात बीच में काटकर चिल्लाकर बोला, "मेरे पॉकेट में गाड़ी की चाबी है, गाड़ी ड्राइव करो, अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा." आर्यांश की आवाज़ के साथ उसका शरीर भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर नजर आ रहा था, जो समय ने पहली बार देखा था। उसने बिना किसी सवाल के उसके पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकाली और गाड़ी स्टार्ट की। इस बीच आर्यांश दीवा को गोद में लिए पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। वो जल्दी जल्दी उसके हाथों को सहला रहा था। दीवा की आंखें आधी खुली हुई थी, वो खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते दीवा समझ रही थी कि अगर वो इस वक्त बेहोश हो गई तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती थी। "सोना नहीं, प्लीज अपनी आंखें खुली रखो, मुझसे बात करती रहो," आर्यांश ने भारी आवाज में कहा। समय भी अपनी तरफ से काफी फास्ट गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो बीच बीच में शीशे से उन दोनों की तरफ देख रहा था। आर्यांश की मुठ्ठियां कसी हुई थी और एक बार फिर वो दीवा के सामने आकर लाचार हो गया था।
"क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या इस तरह से तुम मुझे तड़पाकर मुझे सजा दे रही थी? ठीक है, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, पर प्लीज तुम ठीक हो जाओ," आर्यांश उससे बात कर रहा था ताकि दीवा का ध्यान भटका रहे। दीवा की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। कुछ ऐसा ही हाल आर्यांश का था। उसने बीच में समय की तरफ देखकर जल्दी से कहा, "लाइफ केयर हॉस्पिटल में कॉल करो, डॉक्टर की टीम को बोलो कि वे तैयार रहें." समय ने उसकी बात पर हां में सिर हिला दिया था। उसे आर्यांश पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन दीवा की हालत देखते हुए वो उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो गया था। समय ने हॉस्पिटल में कॉल करके दीवा के इलाज की पहले से तैयारी करवा दी थी। कुछ ही देर में वे हॉस्पिटल पहुंच गए थे और आर्यांश ने बिना स्टाफ की मदद का इंतजार किए खुद ही दीवा को अपनी गोद में लेकर भागकर अंदर जाने लगा। अंदर आते ही दीवा को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाने लगा। वहीं नव्या ये सब दूर से देख रही थी। उसे दीवा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। "काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आखिर आर्यांश कपूर ने तुम्हें इस हालात तक पहुंचा ही दिया, जिसका डर मुझे हमेशा से था," नव्या ने मायूसी से कहा। दीवा को अंदर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा चुका था। नव्या ने देखा कि अचानक वहां काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे और उन्होंने उस एरिया को लगभग खाली करवा दिया था। जरूरी मेडिकल स्टाफ या पेशेंट से जुड़े हुए लोग ही वहां से आ जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स की अपनी पोजीशन लेने के बाद सार्थक उनमें से निकलकर आया। थोड़ी देर पहले आर्यांश के बारे में पता लगाने के लिए उसने लोकेशन देखी थी और वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। आर्यांश की फिक्र में सार्थक सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच गया था। वहीं आर्यांश इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के आगे खड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा, जिन पर खून लगा हुआ था। आर्यांश की उंगलियां कांप रही थी, वो कुछ कदम लड़खड़ाकर दीवार से लग गया था। ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अपने बच्चे को अपने हाथों से मार डाला। मैंने दीवा को एक और दुख दे दिया। दीवा बिल्कुल ठीक कहती है, मैं उसे डिजर्व नहीं करता हूँ," आर्यांश ने रोते हुए कहा।
सार्थक ने आर्यांश को जब अपने हाथों की तरफ देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास दौड़ कर गया। उसे देखते ही आर्यांश उसके गले लग गया था।
सब ठीक है मिस्टर कपूर, डोंट वरी, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है और डॉक्टर गोयंका ठीक हो जाएंगी," सार्थक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। उसे यही लग रहा था कि दीवा से जिद करने के चक्कर में आर्यांश ने उसे चोट पहुंचा दी थी। अब कुछ ठीक नहीं होगा सार्थक, अब कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया, आज मैंने सच में उसे बहुत चोट पहुंचाई है और मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कभी देख पाऊंगा, आर्यांश सुबकते हुए बोला। सार्थक को कुछ समझ नहीं आया, बस वो आर्यांश को तसल्ली दे रहा था। उनके पास डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और लगभग एक घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए थे। उन्होंने आर्यांश की तरफ देखा और फिर सार्थक की ओर। आर्यांश कुछ बोलने की हालत में नहीं था तो सार्थक ने डॉक्टर से पूछा, मिस गोयनका कैसी हैं अब? उम्मीद है उन्हें कोई सीवियर चोट नहीं लगी होगी। बच्चा, क्या दीवा ठीक है? और हमारा बच्चा? आर्यांश लड़खड़ाती आवाज में पूछ रहा था। तभी सार्थक को झटका सा लगा और उसे समझ आ गया था कि आखिर आर्यांश ने ये क्यों कहा था कि अब दीवा को उसने हमेशा के लिए खो दिया है। उनका मिसकैरेज यहाँ लाने से पहले ही हो चुका था। किस्मत अच्छी थी कि आप उन्हें सही वक्त पर ले आए, वरना हमें उनके ट्रीटमेंट में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा और हाँ, उम्मीद है कि आप उन्हें संभाल लेंगे, क्योंकि वो बेहोशी में भी अपने बच्चे का नाम ले रही थी। मुझे लगता है कि डॉक्टर गोयनका को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। उनकी बॉडी पहले से काफी वीक थी और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी काफी थे। अगर उन्हें पहले पता होता तो एक डॉक्टर होने के नाते वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेती। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस मिस्टर कपूर, डॉक्टर ने मायूस स्वर में कहा और फिर वहां से चले गए थे। दीवा बेहोश थी, उसे ऑपरेशन थिएटर से दूसरे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दीवा की हालत के बारे में समय ने नवीन और प्रार्थना को कॉल करके बता दिया था। वे दीवा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे लेकिन आर्यांश के गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। समय भी उनके पास में ही खड़ा हुआ था। उसने नवीन और प्रार्थना से कहा, मैंने दीवा को हॉस्पिटल लाने में उसकी हेल्प की थी और उसने मुझे तक अंदर नहीं आने दिया, ना जाने वो क्या छुपा रहा है।
मैंने दीवा को समझाया था कि हम उससे दूर चलते हैं लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और एक बार फिर उसने दीवा को हर्ट कर दिया। मेरी बेटी न जाने कैसी होगी, नवीन ने अफसोस भरे लहजे में कहा। वहीं प्रार्थना सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहस कर रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, आप ऐसे कैसे मुझे अंदर नहीं जाने दे सकते हैं? वो मेरी बेटी है, आप मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते हैं, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। सॉरी मैडम, हम मजबूर हैं और हमें यही ऑर्डर्स मिले हैं कि यहाँ किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए, चाहे वो मिस गोयनका की फैमिली ही क्यों ना हो, सिक्योरिटी गार्ड ने नज़र झुकाकर जवाब दिया। अजीब जबरदस्ती है, वो हमें हमारी ही बेटी से मिलने से कैसे रोक सकता है? हमें जानने का हक है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, प्रार्थना ने पैर पटकते हुए कहा। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड की वजह से पूरे हॉस्पिटल के फोर्थ फ्लोर पर केओस हो गया था। पहले सार्थक ने दीवा की फैमिली को रोकने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब उसे दीवा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तब उसी ने ये ऑर्डर्स दिए थे। वो जानता था कि दीवा की फैमिली को अगर दीवा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला और आर्यांश उससे मिलने गया था, ये बात जानने के बाद वे सारा इल्ज़ाम आर्यांश पर ही डालने वाले थे। ऊपर से आर्यांश की खुद की हालत ठीक नहीं थी। आर्यांश के हाथों पर लगा खून सूख चुका था। वो प्राइवेट वार्ड के बाहर खड़ा एकटक दीवा की तरफ देख रहा था। दीवा को आर्यांश के अस्पताल लेकर आया था, उस वक्त सुबह के 11 बजे थे और इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो इतने समय से दीवा के वार्ड के आगे ही खड़ा हुआ था। सार्थक कॉफी के ग्लास के साथ आर्यांश के पास पहुंचा और उसे जबरदस्ती बेंच पर बिठा दिया था। उसने उसे कॉफी देते हुए कहा, आपको खुद को संभालना होगा मिस्टर कपूर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मिस गोयनका को होश आने वाला है। एनेस्थीजिया का असर लगभग इतने समय तक ही रहने वाला था। ऊपर से आप गोयनका फैमिली को भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं रोक सकते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगा, आर्यांश ने खोई हुई आवाज में कहा। आपको इन सब का सामना करना ही होगा और इसके अलावा, सार्थक बोलते हुए रुक गया था। कभी न कभी उसे आर्यांश को ये बात बतानी ही थी। उसने कुछ पल रुककर धीमी आवाज में कहा, हॉस्पिटल से ये बात बाहर लीक हो चुकी है कि डॉक्टर गोयनका को आप हॉस्पिटल लेकर आए थे और उनकी हालत ठीक नहीं थी। शायद ये बात भी बाहर आ चुकी है कि वो प्रेग्नेंट थी और उनका मिसकैरेज हो गया है। इस वक्त न्यूज चैनल पर आप दोनों के बारे में न्यूज चल रही है जो काफी ट्रेंडिंग हो रही है। ऊपर से मिस्टर कपूर और आपके दादाजी भी इन सबसे काफी नाराज हैं। आपके इस एक्शन की वजह से कंपनी के शेयर्स नीचे आ गए हैं। पिछले 11 घंटों में क्या हुआ था आर्यांश को इसका कोई अंदाजा नहीं था और ना ही उसे इन सब चीजों से फर्क पड़ता था, लेकिन कपूर फैमिली को जरूर पड़ रहा था। आर्यांश की नेगेटिव इमेज बाहर निकल कर आ रही थी। सार्थक के इतना सब कुछ बताने के बाद भी आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। इन सब के दौरान जो नर्स दीवा का ख्याल रख रही थी वो उसके रूम से बाहर आई और बोली, डॉक्टर गोयनका को होश आ गया है, मैं उनके अटेंडिंग डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, आप चेंज कर लीजिए, आप डॉक्टर गोयनका से मिल सकते हैं। आर्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसकी आंखों से कैद आंसू बाहर निकल आए थे। सार्थक ने लाचार नजरों से उसकी तरफ देखा, वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन तभी आर्यांश वहां से उठा और तेज कदमों से चलते हुए लिफ्ट की तरफ चला गया था। वो सीधा हॉस्पिटल के टेरेस पर आकर रुका। वहां बिल्कुल शांति थी और आसपास कोई नहीं था, अंधेरा भी था,
जहां शायद आर्यांश के आंसू और उसकी तकलीफ कोई नहीं देख या महसूस कर सकता था। आर्यांश दीवार के पास खड़ा हुआ नीचे की तरफ देख रहा था। वो हॉस्पिटल 20 मंजिल का था और कोई भी वहां से नीचे गिरता तो उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। अचानक आर्यांश को 5 साल पुरानी बात याद आ गई, जब शहर के मरने के बाद इसी तरह वो कपूर इंटरनेशनल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा था। वो वहां से गिरकर शहर के पास जाना चाहता था और अपनी तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। फिर ना जाने वो क्या सोचकर रुक गया था, और आर्यांश ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे फिर से एक बार इस मुकाम पर ले आएगी। मैं जीना डिजर्व नहीं करता, मेरे दिए जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे, और आज जो मैंने किया है उसके बाद तुम तो क्या, मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने हमारे बच्चे को अपने इन हाथों से मार डाला और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर की तकलीफ दे दी। अब तो मुझे ये कहने का भी हक नहीं है कि तुम मुझे माफ कर दो दीवा, क्योंकि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। बस दुआ करता हूँ कि तुम इन सब से बाहर निकल जाओ। आर्यांश ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने दीवा का चेहरा आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग दीवा की जो छवि बना रहा था वो थोड़ी देर पहले की थी, जहां दीवा उसकी गोद में कार में बैठी हुई थी और आर्यांश के हाथ उसके खून से रंगे हुए थे। आर्यांश ने खुद को खत्म करने का जो फैसला लिया था वो सब देखने के बाद उसे किसी तरह से अपने फैसले पर शक नहीं था, और वो खुद को खत्म करने के लिए तैयार था। आर्यांश ने बिना सोचे समहे नीचे की तरफ छलांग लगा दी थी।